लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व के सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा कर रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का सातवां अध्याय युवाओं की प्रेरिताई के बारे में जिक्र करता है। युवाओं के संबंध में प्रेरिताई के सुयोग्य वातावरण की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि हम अपने घर में तटस्थ या सभों के साथ अलग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई घर की ईंट के समान है जिसके द्वारा घर का निर्माण हुआ है। यह हमें ईश्वर से धैर्य हेतु प्रार्थना करने की मांग करता है। यह हमें दूसरों को क्षमा करने और हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करने का आह्वान करता है। एक सुदृढ़ और मजबूत संबंध की स्थापना हमसे विश्वास और भरोसे की मांग करती है, जो हमारे जीवन में धैर्य और क्षमाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा करने के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार शुरू होता है। हम अपने में यह अनुभव करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम और स्नेह का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, जो मानवीय जीवन के हमारे सपनों को साकार करती, जहां हम अपने को ईश्वरीय दिव्यता के संसार में प्रवेश करता हुआ अनुभव करते हैं। श्रोताओं, इन सारी बातों के अलावे हमारे संस्थानों को चाहिए कि वे युवाओं के लिए एक उचित स्थान प्रदान करें, जहां वे खुले रूप में आ जा सकें, जहां वे अपने को स्वागत किए जाने का अनुभव करें, जहां वे अपनी कठिन परिस्थिति, हताशी और निराशा के समय खुले रूप में अन्य दूसरे युवाओं के साथ मिलजुल सकें या खुले रूप में एक दूसरे से अपनी खुशी को बांट सकें। इनमें से बहुत सी बातों की पहल पहले ही शुरू की जा चुकी है, जहां हम युवाओं के लिए वार्ता के स्थलों को पाते हैं, जहां युवा युवतियां मित्रता की भावना से एक दूसरे से मिलते, उनके बीच मित्रता का विकास होता, जहां वे न केवल संगीत, खेलकूद और मनोरंजन को ही एक दूसरे के साथ साझा करते, वरन प्रार्थना में अपने चिंतनों के द्वारा एक दूसरे के जीवन को धनी बनाते हैं। ऐसे स्थानों में बिना अधिक खर्च के बहुत सारी चीजों को युवाओं के लिए दिया जा सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति से व्यक्ति अनिवार्य संदेशों को युवा अपने बीच में आदान प्रदान कर सकते हैं, खासकर जीवन की उन बातों को जो प्रेरिताई कार्य के प्रारूपों में पूरा नहीं किया जा सकता है। मित्रता और तर्क वितर्क जो छोटे या बड़े व्यवस्थित दलों में होता है, हमें सामाजिक और दूसरों के संग अपने संबंध स्थापित करने के गुणों को निखारने में मदद करता है। दलों में हमारे अनुभव हमें अपने विश्वास को एक दूसरे के संग साझा करने के बड़े अवसर प्रदान करते और अपने में एक दूसरे को विश्वास का साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। युवागण अपने जीवन में दूसरे युवाओं को दिशा निर्देशन प्रदान करते हुए मित्र मंडली में एक सच्ची प्रेरिताई को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपने में तटस्थ होते हुए अपने को पल्ली समुदाय, संघों और अन्य कलिसियाई संस्थानों के संपर्क से दूर करते हों, वरन अपने युवा प्रेरिताई के द्वारा वे अपने को और भी संपूर्ण रूप से समुदायों के लिए खुला रखते, जो उन्हें अपने विश्वास को जीने, ख्रिस्त को प्रसारित करने, आनंद, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समर्पण की भावना में विकास करने को मदद होते हैं। ऐसे समुदायों में वे अपने में इस बात का अनुभव करते हैं कि वे बहुमूल्य संबंधों में विकास कर सकते हैं। श्रोताओ, हमारे विद्यालय निसंदेह वे स्थल हैं जहां हम अपने को बच्चों और युवाओं के निकट पाते हैं। वे हमारे लिए अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। ख्रिस्तीय समुदाय अपने में इस बात हेतु प्रयासरत रहता है कि वह शिक्षकों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित करे। इसके लिए वह विभिन्न तरह और स्तर के विद्यालयों की स्थापना करती है। युवाओं की शिक्षा के संबंध में पवित्र आत्मा ने हमें पवित्रता की असंख्य बातों और आदर्शों के उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। यदि हम अपने प्रेरिताई कार्य के संबंध में अपने विद्यालयों की बात करें, तो हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप में उनकी टिप्पणी करें जो बहुधा धार्मिक बातों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां हम विश्वास के अनुभवों को पूर्ण रूपेण फलहित करने में अपने को अयोग्य पाते हैं। कुछ कैथोलिक विद्यालयों की स्थापना केवल आत्मरक्षण के लिए हुई है। परिवर्तन का डर उन्हें आने वाले खतरों से पहले और भी रक्षात्मक बना देता है। एक विद्यालय जो अपने में सुरक्षा का स्थल बनता, जहां बच्चों को गलती करने से बचाया जाता, वह अपने में इस मनोभाव को एक व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित करता है। यद्यपि यह बात बच्चों में एक खास रूप में झलकती है, विशेषकर युवा जो ऐसे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं। हम उनमें दुनिया की बातों और उन्हें बतलाई गई बातों में सामंजस्य का अभाव पाते हैं। धार्मिक और नैतिक बातों को जिस रूप में उन्हें बतलाया और समझाया गया है, वे उन्हें अपने लिए बेतुकी बातों स्वरूप पाते हैं। वे प्रार्थना करने के प्रारूपों से अपने को अशिक्षित पाते और न ही अपने विश्वास का अभ्यास कर पाते हैं, जो उन्हें वर्तमान समाज में अति शीघ्रता से बदलते रूपों का सामना करने में मदद करे। शिक्षा प्रदान करने वालों को यह बात सबसे बड़ी खुशी प्रदान करती है जब वे किसी एक छात्र को अपने में मजबूत पूर्ण रूपेण विकास करता एक नेता के रूप में देखते, जो अपने को दूसरों के लिए देने हेतु तैयार रहता है। कैथोलिक विद्यालय सुसमाचार की प्रेरिताई हेतु अपने में महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इस संदर्भ में हमें उन नीति निर्देशों का पालन करने की जरूरत है जिन्हें वेरिटातिस गाउडियम हमारे लिए निर्देशित करता है, जिससे विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रेरिताई कार्यों को नवीकृत और पुनर्जागृत किया जा सके। यह हमें सुसमाचार के नवीन अनुभवों, विस्तृत वार्ता, अंतर विषय और पार अनुशासिक संबंधों, संस्कृतियों को जानने हेतु प्रोत्साहन, कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु कार्य तंत्र और उन लोगों की विशेष सोच रखने की मांग करता है जो समाज में सबसे निचले स्तर में जीवन यापन करते या समाज ने जिन्हें परित्याग दिया है। हमें इस बात को ध्यान में रखने की अति आवश्यकता है कि हम अपनी बुद्धि, हृदय और हाथों के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करें। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम कल भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने विश्व भर के युवाओं को निमंत्रण दिया था कि वे बुजुर्गों के प्रति कोमलता का भाव दिखाएं, जब वे कोविड-19 स्वास्थ्य दिशा निर्देश का पालन करते हुए अकेले रहने के लिए मजबूर हैं। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठे परिषद ने तत्काल इस निमंत्रण का प्रत्युत्तर देते हुए एक अभियान जारी किया। इस अभियान का शीर्षक है, बुजुर्ग तुम्हारे दादा दादी हैं। सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में परिषद ने युवाओं को निमंत्रण दिया है कि वे एकाकीपन महसूस करने वाले बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उनके प्रति दयालुता एवं स्नेह प्रकट हो। विज्ञप्ति में कहा गया है कि महामारी ने बुजुर्गों को अधिक कठोरता से मारा है और इसने पीढ़ियों के बीच पहले से कमजोर संबंध को तोड़ दिया है। हालांकि सामाजिक दूरी के नियमों का सम्मान करने का मतलब अकेलापन और परित्याग की नियति को स्वीकार करना भी नहीं है। परिषद ने उन लोगों के उदाहरणों का स्मरण दिलाया है जिन्होंने फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से बुजुर्गों के साथ संपर्क बनाए रखा। यहां तक कि कुछ लोगों ने वृद्धाश्रमों में संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी नियम अब भी कई जगहों पर लगे हुए हैं। परिषद ने युवा कैथलिकों से अपील की है कि वे अपने पलियों एवं पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को एक आलिंगन भेजें। ऐसा वे फोन, वीडियो कॉल या एक मैसेज भेजकर कर सकते हैं। अपील की गई है कि जहां संभव है या जब स्वास्थ्य आपातकाल अनुमति देता है तब युवा बुजुर्गों से मुलाकात करने जाएं और उनका आलिंगन करें। उधर कोलकाता की झुग्गियों में कोविड-19 से संघर्ष के योद्धा सलेशन फादर जोसेफ आयमन तिल का निधन कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद 19 जुलाई को हुआ। वे 73 साल के थे। कोलकाता कैथलिक नवीनीकरण सेवा के अध्यक्ष रेमन बप्टिस्ट ने एशिया न्यूज को बतलाया कि फादर जोसेफ कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से ही गरीब लोगों की सेवा कर रहे थे। जब शहर में तालाबंदी थी तब फादर नियमित रूप से झुग्गी बस्तियों का दौरा करते थे। विशेषकर वे वहां के बच्चों से मुलाकात करते थे। वे कोलकाता की बस्तियों में गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्री भी बांटते थे। बप्टिस्ट ने बतलाया कि उन्होंने फादर जोसेफ के साथ 20 से अधिक सालों तक काम किया। उन्होंने गौर किया कि वे कोलकाता की गलियों में बिल्कुल मदर तेरेसा के पदचिन्हों पर चलते थे। हालांकि फादर जोसेफ को प्रोस्टेट की समस्या थी। 19 जुलाई को कोविड-19 की वजह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कोविड-19 की वजह से वर्तमान में सलेशन धर्म समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर फादर जोसेफ पौरिया भी अस्पताल में हैं।
सोमवार को जब युद्ध विराम के लिए समझौता किया गया, कारितास यूक्रेन के निदेशक ने कहा कि लोग चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो, किंतु उन्हें संदेह है कि युद्ध विराम हो पाएगा। पूर्वी यूक्रेन में 6 सालों से युद्ध हो रहा है और कई युद्ध विराम हो चुके हैं, फिर भी एक और युद्ध विराम सोमवार को तबाह डोनवास क्षेत्र के लिए प्रभावी हुआ, जहां रूसी समर्थित अलगाववादी अप्रैल 2014 से यूक्रेनी बलों से लड़ रहे हैं। संघर्ष विराम पर पिछले हफ्ते यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करते हुए त्रिपक्षीय संपर्क समूह रूसी संघ और यूरोप में सुरक्षा तथा सहयोग संगठन के सदस्यों से बातचीत की थी। कारितास यूक्रेन के निदेशक आंड्रीज वास्कोविच ने वैटिकन न्यूज से युद्ध विराम समझौते के महत्व एवं यूक्रेन द्वारा सामना की जा रही 3 मानवीय संकटों पर बातें की। आंड्रीज ने कहा, समझौता वास्तव में लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लोग युद्ध का अंत चाहते हैं। उन्होंने याद किया कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संघर्ष को समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ कार्यभार संभाला था, किंतु उन्हें लगता है कि युद्ध को समाप्त करने की कुंजी ज़ेलेंस्की के हाथ में नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। संपर्क समूह द्वारा पिछले सप्ताह हस्ताक्षर किए गए युद्ध विराम का स्वागत करते हुए वास्कोविच ने उल्लेख किया कि चूंकि डोनवास क्षेत्र के लिए अन्य संघर्ष विराम हो चुके हैं और टूट भी गए हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह संघर्ष विराम सफल हो पाएगा। वास्कोविच ने कहा, डोनवास क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं और कोविड-19 ने इसे और मुश्किल बना दिया है। इस क्षेत्र में कुल 3.1 मिलियन लोग हैं, जिन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता है। भोजन का वितरण करना कठिन हो गया है और कई लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 21वीं सदी के यूरोप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ युद्ध का अनुभव करते हुए बढ़ रहे हैं। वास्कोविच ने कहा कि यह कुछ लोगों के लिए सचमुच खतरनाक स्थिति है। उधर बांग्लादेश के ख्रिस्ती एवं मुस्लिम अमेरिका के मिशनरी फादर यूजीन एडवर्ड होमरिक के निधन पर शोक मना रहे हैं। फादर यूजीन का निधन कोविड-19 से 2 दिनों पहले हुआ। वे 92 साल के थे। फादर यूजीन करीब 60 सालों तक बांग्लादेश की सेवा करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं कथित इस्लामी चरमपंथी समूह द्वारा मौत की धमकी देने के बाद 2016 में अमेरिका लौट गए थे। फादर यूजीन करीब 60 सालों तक बांग्लादेश की सेवा करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं कथित इस्लामी चरमपंथी समूह द्वारा मौत की धमकी देने के बाद 2016 में अमेरिका लौट गए थे। रविवार को बांग्लादेश के पीरगा चप्पली गिरजाघर में करीब 100 लोगों ने जमा होकर मेमनसिंह धर्म प्रांत में फादर यूजीन के असाधारण योगदान की याद की। इस धर्म प्रांत में अधिकांश गारो जाति के लोग रहते हैं। फादर यूजीन की सेवा का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के लिए समर्पित था। उन्होंने गारो संस्कृति को जीवित रखने के लिए 2 उच्च विद्यालय एवं 28 प्राथमिक स्कूल खोले हैं। गारो महिला सुरमा चिरान ने कहा, फादर होमरिक आधुनिक गारो समुदाय के पिता कहे जाते हैं। यदि वे मेमनसिंह नहीं आए होते तब आदिवासी समुदाय हमारी संस्कृति को नहीं बचा पाता। मेमनसिंह धर्म प्रांत के गारो पुरोहित फादर सिमोन हाका ने इस बात पर जोर दिया कि 60 सालों के प्रेरितिक जीवन में उन्होंने गारो लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदल डाला। स्कूल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर एवं प्रताड़ित गारो समुदाय की रक्षा कर फादर यूजीन हमारे जीवन के एक अपरिहार्य संदर्भ बन गए हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।